الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اپنی اسلاف کے قصے اور ان سے سیکھ رہے ہیں. یہ محض آپ کے لیے قصہ خوانی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو کہانیاں بتائی جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے حالات کو ذرا جانچیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج کی دنیا میں ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے. ہاں، ہم ان کی زیارت صرف کتابوں میں ہی کر سکتے ہیں. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور پھر دنیا میں خس و خاشاک ہی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو عظیم لوگوں کی عظیم باتیں دیکھنے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور انہی کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے، جنہوں نے صحابہ کی صحبتیں پائیں. یہ خود نہ پیغمبر ہیں نہ خود صحابی ہیں، اس کے باوجود ان کے مرتبے کتنے بلند ہیں. تو آج دیکھتے ہیں ہم ایک اور تابعی کو، عطا بن ابی رباح. ہو سکتا ہے آپ نے ان کا نام بھی کبھی نہ سنا، مگر یہ کتنی عظیم شخصیت تھی ان کے حالات سے پتہ چلے گا. اس وقت خلیفہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیت اللہ آئے میں ہے. ذی الحج کا عشرہ چل رہا ہے اور بیت اللہ میں انسانوں کا ایک سمندر ہے. ان میں پیدل بھی ہیں، سوار بھی ہیں، بوڑھے جوان، کالے گورے سب ہیں. انہی میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی جب عمر بن عبد العزیز کی بات ہو رہی تھی، کہ وہ بھی انہی لوگوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی خلیفہ رہتا ہے اور نہ کوئی غلام. خلیفہ کے پیچھے اس کے شہزادے بھی ساتھ ساتھ تھے. خلیفہ نے طواف سے فارغ ہوتے ہی اپنے وزیر سے پوچھا، مفتی اعظم مکہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ اس نے عرض کیا، وہ بیت اللہ کی مغربی جانب نماز ادا کر رہے ہیں. بادشاہ سلامت اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ وہاں گئے. جب اس طرف چلے تو حفاظتی دستہ حرکت میں آ گیا، راستہ بنانے لگا. بادشاہ نے اس کو منع کر دیا کہ یہ دربار الہی ہے، یہاں سب برابر ہیں، یہاں وہی افضل ہے جس کی عبادت قبول ہو جائے اور وہ متقی انسان ہے. یہ کہتے ہوئے خلیفۃ المسلمین اس شخص کی طرف چل دیا جس کے بارے میں اپنے وزیر سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا. دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہے، دنیا سے بے نیاز رکوع اور سجدے کر رہے ہیں. لوگ ان کے انتظار میں دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں. خلیفہ بھی عام لوگوں کی طرح بیٹھ گئے اور اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب یہ دونوں شہزادے غور سے اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی ملاقات کا شوق امیر المومنین اور اتنے سارے لوگوں کو ہے. سب ٹک ٹکی باندھے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم ان سے بات کر سکیں. شہزادے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حبشی بوڑھا، بالکل سیاہ رنگ، گنگریالے بال، چپٹی ناک، ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب یہ شخص نماز سے فارغ ہوا اور اپنا رخ اس طرف کیا جدھر خلیفہ تھے، تو سلیمان بن عبد الملک نے بڑے ادب سے سلام کیا. اس نے بڑی بے نیازی سے سلام کا جواب دیا. دعا سلام کے بعد امیر المومنین نے حج کے مسائل ان سے پوچھے. انہوں نے ہر مسئلے کا تفصیلی جواب دیا. جب تک مسئلے پوچھتے رہے تو وہ جواب دیتے گئے. اس کے بعد امیر المومنین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور صفا مروہ کی طرف چل دیا. जब वो सही कर रहे थे तो शहजादों ने पूछा एक, अच्छा उससे पहले उन्होंने एक आवाज सुनी कि कोई ऐलान कर रहा है कि मुसलमानों जरा गौर से सुना, इस मुकद्दस मकाम पर अता बिन अबी रबाह के अलावा लोगों को कोई और फतवा नहीं दे सकता। हाँ किसी वजह से अगर वो ना हो तो उनकी गैर हाजिरी में अब्दुल्ला बिन अबी नजीह को फतवा देने का हक है। ये ऐलान सुन के एक शहजादे ने बाप की तरफ देखते हुए पूछा, अब्बाजान हुकूमत का एक कारिंदा ये ऐलान कर रहा है कि यहाँ अता बिन अबी रबाह के अलावा कोई फतवा नहीं दे सकता, हालांकि आपने थोड़ी देर पहले एक ऐसे आदमी से दीनी मसाइल पूछे जो तो बड़ा मामूली सा था, और उसने आपकी भी कोई परवाह नहीं की, ना ही वो आपका ऐसा अदब और ताजीम बजा लाया जैसे लोग करते हैं। ये बात सुन के अमीर मोमिनीन ने बेटे से कहा, बेटे ये शख्स जिसके सामने हम अदब से बैठे थे और मसाइल पूछ रहे थे वही तो अता बिन अबी रबा है। तुम आज उसकी शाने बेनियाजी और हमारी उसके सामने आजजी और इनकसारी को देख चुके हो। ये अजीम शख्सियत है अपने इल्म, अपने अमल, अपने तकवा की वजह से आज यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की मसनद का वारिस है। मैंने वो यहाँ पे इस कुर्सी पे वो बैठते थे। पीर फरमाए इल्म हासिल करो, इल्म एक रजील आदमी को भी मुअज्जज बना देता है, गुमनाम को भी शोहरत दे देता है और गुलाम को भी बादशाह बना देता है। और वाकई ये एक हकीकत है, क्योंकि अता बिन अबी रबाह जो है बचपन में ये एक औरत के गुलाम थे जो मक्का में रहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हबशी गुलाम को बचपन से इल्म का शौक दिया था। उन्होंने अपने वक्त को तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, एक हिस्सा अपने आका जो एक औरत थी उसकी खिदमत के लिए वक्फ करते, घर के काम काज में मसरूफ रहते, दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए रखा हुआ था और बहुत ही शौक से अल्लाह ताला की इबादत करते थे, तीसरा हिस्सा इल्म के हसूल के लिए खास किया हुआ था। और इन्होंने बड़े बड़े सहाबा से इल्म हासिल किया, हजरत अबू हुरैरा से, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से, यहाँ तक कि उनका सीना इल्म से और अहादीस और फिक से मामूर हो गया। जब वो दौलतमंद मक्की औरत ने देखा कि मेरा तो गुलाम इतना ज्यादा इसने अपने आप को समझे अल्लाह ताला के लिए बेच दिया और अपनी जिंदगी इल्म के हसूल के लिए वक्फ कर दिया, तो उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुलाम को आजाद कर दिया। तो इन्होंने तब से अता बिन अबी रबाह ने बैतुल्ला में डेरे डाल दिए थे और इसी को अपना घर समझ लिया था, जिसमें उन्होंने समझ ले मदरसा भी यही था उनका, उनके इबादत का भी यही थी, सब कुछ यही था। 20 साल तक ये इसी जगह मस्जिद हराम में मुकीम रहे, 20 साल। तो ये इतने बड़े एक मकाम पर फायज हुए जिन पर इनके वक्त में और चंद एक के अलावा कोई फायज नहीं हुआ। इनके इल्मी मकाम का अंदाजा इससे लगा लें कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल हैं, जब उमरा अदा करने के लिए मक्का तशरीफ लगा तो वहां लोग उनके गिर्द जमा हो गए उनसे दीनी मसाइल पूछने के लिए, हर एक की ख्वाहिश थी कि आगे से आगे बढ़ के इनसे दीनी मसला पूछे। तो उन्होंने लोगों को देख के कहा, अहले मक्का मुझे हैरत होती है कि आप मेरे से दीनी मसले पूछने आ गए जबकि इब्ने अबी रबाह हर वक्त आपके दरमियान यहाँ मौजूद है, उनसे बेहतर दीनी मसाइल कौन बता सकता है, यानी सहाबी रसूल ये कह रहे हैं। और इनका ये मकाम अता बिन अबी रबाह का इल्म और अमल का ये मकाम दो बातों की वजह से इनको मिला। अब ये गौर करने की बात है कि कैसे इनको ये मकाम मिला, दो बातें कही जाती हैं इनके बारे में और हमारे लिए इनमें सबक है। एक ये कि इनको अपने नफ्स पे बहुत कंट्रोल था, ये नफ्स को मौका नहीं देते थे कि ला यानी बातों से लज्जत हासिल करें, बेकार बातों में लगा रहे। दूसरा अपने वक्त का इनको बहुत एहसास था, अपने वक्त को कभी फजूल बातों में, फजूल कामों में जाया नहीं करते थे। तो नफ्स पे कंट्रोल था और वक्त को जाया नहीं करते थे। आए कूफे के एक बड़े आलिम दीन एक दफा इनकी जियारत के लिए आए, तो इनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो आपने उनको भी और जो भी जायरीन थे उनको इरशाद फरमाया कि मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसने मुझे बहुत फायदा दिया, ये बात तुम्हें भी फायदा देगी। सबने पूछा कि क्यों नहीं, आप जरूर बताएं। तो वो कूफे के जो आलिम थे ना, उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने एक दिन नसीहत की थी एक बात की, वो नसीहत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और वो नसीहत क्या थी कि हमसे पहले जो लोग थे यानी सहाबा कराम फजूल बातों को नापसंद किया करते थे। तो मैंने अता बिन अबी रबाह से पूछा कि फजूल बातों का क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनका जवाब कितना जबरदस्त था जो उन्होंने इनको, ये जो कूफे के आलिम थे इनको दिया अता बिन अबी रबाह ने, कि कुरान मजीद पढ़ना, उसको समझना, हदीर से रसूल बयान करना, उस पे अमल करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, या ऐसा इल्म हासिल करना जिसमें अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता हो, या अपनी जरूरत की बात, या माईशत के बारे में, तिजारत वगैरह इसके बारे में जिसके बात किए बगैर कोई चारा ही नहीं है, यानी वो आपकी जरूरत है, इसके अलावा सहाबा कराम हर बात को फजूल समझते थे। सुभान अल्लाह। फिर ये जो कूफे के आलिम थे ना, कहते हैं कि फिर अब्दुल ये अता बिन अबी रबाह ने मेरी तरफ गौर से देखा और फरमाया क्या तुम्हें पता है, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम्हारे ऊपर मुहाफिज फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। फिर फरमाते हैं क्या हम में से किसी एक के सामने उसका नामा आमाल नशर कर दिया जाए जो उसने सिर्फ दिन के पहले हिस्से में मुरतब किया, यानी हमारा जो सुबह से समझने दोपहर तक का इतना सा हमारा नामा आमाल अगर नशर कर दिया जाए तो हमें उसको देख के शर्म महसूस नहीं होगी, क्या ये शिद्दत से एहसास नहीं होगा कि मैंने जो कुछ भी किया ना इसमें कोई दीन का फायदा ना दुनिया का। देखिए कैसी प्यारी नसीहत उन्होंने की। और वाकई अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारी जिंदगी के अंदर फजूल बातों का वक्त नहीं है, कभी सियासत में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कभी ड्रामों फिल्मों में कर रहे हैं, कभी गेम्स में कर रहे हैं, कभी बेकार की बातों में कर रहे हैं जिनका ना दुनिया का कोई फायदा और ना आखरत का, कुछ हासिल नहीं उनसे। अल्लाह अकबर। तो ये लोग अपने वक्त को सही जगह लगाने वाले थे जब भी इतने मकाम और मर्तबे पे पहुंचे, क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है, इसके अंदर इतना इंसान के पास फालतू वक्त नहीं है कि उसको जाया कर दे। अता बिन अबी रबा के इल्म से लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और एक वाक्या बड़ा मशहूर है इनसे इल्म, इनके इल्म से फायदा उठाने वालों का, कि इमाम अबू हनीफा बयान करते हैं कि हज की अदायगी के लिए मेरे सामने बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल आई। मैं हजाम के पास गया तो ताकि हजामत बनवा लूँ, एहराम खोल लूँ, तो मैंने हजाम से पूछा कि कितने पैसे लोगे, जैसे आम पूछते हैं हम। तो उसने फौरन जवाब दिया, अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाए, इबादत की कीमत नहीं लगाई जाती, बैठो जो भी तुम्हारी तौफीक होगी दे देना। मैं ये सुन के शर्मिंदा हुआ और बैठ गया। उसने कहा किबला रुख हो के बैठो, ये सुन के मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं किबला रुख होके बैठ गया और सर की बाई जानब हज्जाम की तरफ कर दी। तो उसने कहा, जनाब दाई तरफ करीब कीजिए। मैंने दाई तरफ उसके करीब की, उसने हजामत बनाना शुरू कर दी और मैं हैरत में डूबा हुआ खामोश अपनी हजामत बनवा रहा था। तो उसने कहा, जनाब आप खामोश क्यों बैठे हैं, आप अल्लाह अकबर क्यों नहीं कहते। मैंने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हजामत से फारे हो गए और उसे पैसे अदा कर दिए। जाने लगा तो उसने पूछे, कहाँ का इरादा है। मैंने कहा, आप घर जा रहा हूँ। उसने कहा, पहले 2 रकत नमाज पढ़ लें, इसके बाद जहाँ चाहें चले जाएं। मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी और अपने दिल में कहा, ये हज्जाम तो कोई बहुत बड़ा आलिम लगता है। नमाज से फारिग होकर मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, ये बातें आपने कहाँ से सीखी। उसने कहा, मुफ्ती आजम हजरत अता बिन अबी रबाह से। सुभान अल्लाह, यानी लोग कितने उनसे फैज हासिल करते थे। अच्छा, इन अता बिन अबी रबाह पे दुनिया बड़ी मेहरबान थी, लेकिन उन्होंने दुनिया से हर मुमकिन इज्तनाब किया। जिंदगी भर सिर्फ एक कमीज पे ही गुजारा किया। कमीज भी ऐसी होती थी कि 5 दिरहम से ज्यादा की नहीं होती थी। हुक्मरान अक्सर इनको दावत देते थे कि हमारे पास आए, लेकिन वो इससे परहेज करते थे। बादशाहों के दरबार में सिर्फ उस वक्त जाते थे जब लोगों का कोई काम कराना होता था, लोगों के फायदे की खातिर, अदरवाइज नहीं जाते थे। यानी कितनी बड़ी बात है, एक दफा गए हैं खलीफा के पास तो उस वक्त भी लोगों के काम करवाने के लिए। इन्होंने 100 साल की उम्र पाई और सारी उम्र इल्म और अमल को अपना सरमाया समझा, लोगों से बेपरवाही रखी और अल्लाह ताला की तरफ रغبत रखी। पसंद करते थे कि तन्हाई में रहूं और इबादत करूं। जब मौत का वक्त करीब आया तो दुनिया के बोझ से अपने कंधों को आजाद पाया और नेक आमाल का तोशा उनके पास मौजूद था। 70 हज इन्होंने किए, इसलिए कि वहीं पे रहते थे जाहिर है, और अपनी जिंदगी में हर साल हज करते रहे। इस दौरान हमेशा अल्लाह ताला की रजा का और जन्नत का सवाल करते रहे और अल्लाह ताला की नाराजगी और जहन्नम से पनाह मांगते रहे। ये हैं अजीम लोग। तो इल्म था जिन्होंने, जिसने एक गुलाम को क्या मकाम अता कर दिया। इसलिए अगर हम आला मर्तबे पाना चाहते हैं तो इल्म हासिल कीजिए, इल्म का शौक रखिए। इल्म बहुत बड़ी दौलत है और इससे इंसान बहुत कुछ पा लेता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसके मकामात होंगे वो आप सोच नहीं सकते। तो इनकी जिंदगियों के बारे में आप जरूर जब सुने तो गौर से सुने और इसमें से अपने लिए कम से कम कोई एक बात जरूर ले लें। देखिए, हमने वक्त के जाया ना करने की एक नसीहत इनसे सुनी है और कैसे इनके जो आगे जिन्होंने इनसे इल्म लिया था उनके तकवा का क्या हाल था। सुभान अल्लाह। आज हम अपनी रात को सजाने के लिए एक और काम करेंगे। देखिए, इससे पहले हम क्या क्या सीख चुके हैं, भूल तो नहीं गए। वुजू करना है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, हमने सूरह मुल्क पढ़नी है, हमने 3 कुल पढ़ के सोना है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो रात का भी एक पूरा प्रोटोकॉल है, रात को सोने से पहले कितनी सारी चीजें करके सोना है। तो अब और क्या करना है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ के सोनी, आमन रसूलू से एंड तक। या वो पता है, अल्लाह ताला के अर्श के खजानों में से, अर्श तले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 आयात दी गई थी जब आप मेराज पे गए थे। बहुत शान वाली आयतें हैं ये 2। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात रात को पढ़ ले, ये उसे हर चीज से काफी हो जाती। जब कह दिया जाता है ना हर चीज से काफी हो जाती, तो फिर समझ लें हर चीज से, यानी दुनिया की हर चीज से, आप नेकी की हर चीज से, इबादत की, यानी आप समझ लें कि सारी रात की इबादत के लिए काफी हो गई, फकर व फाके के लिए काफी हो गई, हर परेशानी के लिए काफी हो गई, हिफाजत के लिए काफी हो गई, हर चीज में सभी कुछ आ जाता है ना। तो इनको भी नहीं कभी छोड़ना, कोशिश कीजिए कि आप इनको याद कर लें। याद होंगी तो ये बड़ी मुख्तसर सी है, 1 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। तो अजीम दो आयती हैं, हम क्यों ना याद करें जो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से दी गई, स्पेशली मेराज का तोहफा है। और जब भी आप रात का कयाम भी करें ना, तो खुशू के साथ करें, तफक्कुर के साथ करें, ऐसे ही बस टकरे ना मारें, इसलिए कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं तफक्कुर के साथ 2 रकतें भी जो पढ़ी गई वो गाफिल दिल के साथ सारी रात के कयाम करने से बेहतर है। तो ये ना कहें कि मैंने 20 पढ़ ली, कौन 10 पढ़ रहा है, कौन 8 पढ़ रहा है, मैं तो इतनी पढ़ती हूँ, इसमें फख्र करने की जरूरत नहीं। अगर गफलत है दिल पे, सोचें कहीं और, ख्यालात कहीं और भटक रहे हैं दुनिया जहान में और बस रुकू सिद्धे करते जा रहे हैं, तो फिर इस ऐसी इतनी सारी रकतों से तो बेहतर है कि थोड़ी पढ़ लें लेकिन खुशू के साथ पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। अच्छा, जुमे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जुमा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, और इसकी सुन्नतें मैं आपको लास्ट जुमे पे बता चुकी हूँ, एक दफा दोबारा उनको दोहरा लेते हैं कि वो कौन सी थी। मुख्तसरन, आज हमने शावर करना है, गुसल करना है, अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनना है, मिसवाक करनी है, हमने नाखून काटने हैं। तो ये तो आम बातें हैं ना, हम इनको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सुन्नत समझ के करें, अजर भी हम पा लेंगे, ठीक है। और सूरह कहफ पढ़नी है, फिर दुरू शरीफ की कसरत करनी है, और खास तौर पे एक चीज जो हमने करनी है वो ये है कि आसर से मगरिब के दरमियान हमने कबूलियत की घड़ी को तलाश करना है, ठीक है, ये जरूर करना है हमने कि हम असर से मगरिब के दरमियान कबूलियत की इस घड़ी को जरूर पा लें, क्योंकि उस वक्त कोई भी दुआ हम करेंगे तो वो कबूल होगी। और इसी तरह कोशिश कीजिए कि आज सारा दिन दुरू शरीफ की कसरत करें, दुरू शरीफ की कसरत करें। और मैंने आपको पिछली दफा भी एक मुख्तसर सा दुरूद बताया था, और आज भी बहुत शॉर्ट सा एक दुरूद है जो कहने में बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीयिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीयिना मुहम्मद, कितना आसान है। तो ये भी मसनून दुरूद है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी लंबा लगता है कि इतना टाइम नहीं लगा सकती, तो आप कम से कम ये दुरूद पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपने दुरूद को लाजिम रखें, देखिए सारा दिन में दुरूद शरीफ से अपनी जुबान को तर रखिए। अच्छा, फिर सूरह कहफ भी, उसके लिए भी टाइम निकालें। और जो दुआ आज हमने मांगनी है, खास तौर पे दुआओं में देखिए मसनून दुआएं जो हैं इनकी कोशिश किया कीजिए, क्योंकि ये जो दुआएं हैं ना बड़ी जामे हैं, बाकी दुआएं भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन दुआओं से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हमें वैसे याद नहीं रहती वो इन दुआओं के जरिए हमें मतलब हम उनको कर लेते हैं, उन चीजों को मांग लेते हैं। आज की जो दुआ है वो भी बहुत ही फायदेमंद दुआ है, क्योंकि इसमें उन सब चीज़ों से पनाह मांगी गई है जो इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और ये 25 नंबर दुआ है आपके PDF में। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल, ए अल्लाह मैं आजजी और सुस्ती से तेरी पनाह में आती हूँ। और वल जुबनी वल बुखल, और बुजदिली से और बुखल से, वल हारामी वल कसवती वल गफलती, और इंतहाई बुढ़ापे से, रजील बुढ़ापे से, और कसवा सख्त दिली से और गफलत से, वल आईलाती और तंगदस्ती से, व ज़िल्लती और ज़िल्लत से, और मस्कनत नादारी से, व आऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल कुफ़री व शिर्की, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ
فقر سے، فقر و فاقے سے جس کو ہم کہتے ہیں، اور کفر سے اور شرک سے، والفسوق اور نافرمانی سے، والشقاق اور مخالفت سے، والنفاق اور منافقت سے، اور والسمعاتی اور بری شہرت سے، والریائی اور ریاکاری سے، اس سے بھی انسان کے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، اور میں بہرے پن، گونگے پن سے، والجنون اور پاگل پن سے، والجزام اور کوڑ سے، والبرس اور برس سے، وسیئ الاسقام اور تمام جو بری بیماریاں، جیسے آج کل کینسر ہے، کووڈ ہے، اور پتہ نہیں بے شمار بری بری بیماریاں، اللہ ان سب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. بہت ہی ضروری دعا ہے جو کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے.
اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں انٹر ہو سکتے ہیں، اور اس کے کام آپ کو بتائے تھے، اور وہ کام آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے تاکہ انشاءاللہ تعالی جب وہ کام کرنے لگے تو کوئی مشکل نہ آئے. تو سلام بھی کرنا ہے، اور بھی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھی، کھانا بھی کھلانا ہے، رات کا قیام کرنا ہے آپ نے خاص طور پہ، ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان بہترین وقت ہے اپنی نئی عادتیں ڈالنے کا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہمیں نیند آ رہی ہے، جیسے نماز میں نیند آ رہی ہے، قرآن پڑھتے وقت نیند آ رہی ہے، تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی تم میں سے رات کو نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی زبان قرآن میں اٹکنے لگے، یعنی نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا پڑھ رہے، اور وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہتا ہے، تو چاہیے کہ لیٹ جائے تھوڑی دیر، پھر آپ اپنی آنکھ لگا لیں. ایک اور حدیث ہے، یہ دونوں مسلم میں ہی ہیں، کہ جب تم میں سے ایک کو اونگ آ جائے نماز میں تو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی اونگنے لگتا ہے تو گمان ہے کہ وہ مغفرت مانگنے کا ارادہ کرے اور اپنی جان کو گالی دے دے، یعنی کچھ اور سے اور ہی نہ انسان کہہ دے، اس لیے اس وقت بہتر ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر لیٹ جائے، بجائے اس کے کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ دعاؤں میں کچھ اور ہی کہہ دیں، کچھ اور ہی باتیں بولنے لگے، یا قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ سے کچھ الفاظ منہ سے نکلنے لگ جائے. تو اس مہینے میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی چیز زبان سے نہ نکال دیں کہ الٹا ہمارے لیے وہ اللہ نہ کرے وبال بن جائے. دیکھیں یہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں نا، یہ دعا کے بھی حوالے سے، اور اس میں بھی جتنی بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، یہ بعض دفعہ انسان ان چیزوں میں، ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے دل کی سختی کی وجہ سے، اور دل کی سختی سے بچنے کے لیے ابن قیم نے ہمیں جن باتوں سے کیئرفل ہونے کا بتایا نا، ان میں سے یہ چند باتیں یہ ہیں کہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ دل کو بگاڑ دیتی ہے. مگر اتنا سو جائیں کہ آپ، یہ نہ ہو کہ رات کو جاگ نہ سکے، یہ نہ ہو کہ آپ سے قیام نہ ہو سکے. تو زیادہ سونا نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں، سارا سارا دن سوئے رہیں، مگر اتنی نیند ضرور لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے عبادت کے لیے کھڑے ہونا، پھر میری عبادت کے اندر یہ ہیلپ کرے گی. اس نیت کے ساتھ اگر آپ سوئیں گے بھی تو انشاءاللہ وہ سونا بھی عبادت بن جائے. تو زیادہ نہیں سونا، مگر اتنا سونا ہے کہ جو آپ کے لیے ہیلپ کرے آپ کو رات کو جاگنے کے لیے. تو جو انہوں نے دل کی سختی کی چیزیں بتائی تھیں، تو زیادہ کھانا، زیادہ سونا، لوگوں کے ساتھ بہت سوشلائز کرنا، بہت زیادہ ہر وقت ہی میلے ٹھیلے میں رہنا، ہر وقت ہی بس پارٹیز کرتے رہنا، ہر وقت ملنا جلنا، اس سے بھی نا دل سخت ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے ذرا پرہیز ہی کرنا چاہیے. اور آج کے دن صدقہ ضرور کیجئے. ہمارے اسلاف بھی جمعے کے دن کوشش کرتے تھے کہ وہ صدقہ کریں. صدقہ جو ہے نا، वो अल्लाह ताला के गजब को मिटा देता है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के गुस्से को खत्म करने वाली चीज सदका है। और खाने पीने का भी सदका आप कर सकते हैं, पैसों से भी कर सकते हैं। जैसे हमने वो सलामती के साथ जन्नत में जाने की जो बात की थी, उसके अंदर एक था ना कि खाना खिलाना। एक असलाफ में एक खातून हुआ करती थी जो अपने बच्चों की रोटी में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा आटे में से निकालती रहती थी और उससे एक रोटी बना लेती थी। यानी बच्चों की रोटी के पेड़े में से छोटा छोटा निकाल के उससे एक रोटी बना लेती थी और किसी फकीर को दे देती थी। तो देखिए किस तरह से इंसान सदका कर सकता है। आप अगर ये कहते हैं ना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किस चीज़ का सदका करें, कैसे करें, तो देखना चाहिए हर एक के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है और वो उसमें से सदका कर सकता है अगर गौर किया जाए। लिहाजा सदके के लिए जरूर कुछ ना कुछ निकालें। अगर पैसा नहीं है तो कोई और चीज से सदका करें, किसी को खाना दे दें, अपने खाने में से थोड़ा सा निकाल दें, लेकिन सदके की आदत हम डालें। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और हमारी कमियों कोताहियों को दूर फरमा दे और हम सबकी बख्शिश फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।